ये आकाशवाणी है। अब आप जया भारती से समाचार सुनिए। सरकार देश में दुर्लभ मृदा चुंबकों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 1,345 करोड़ रुपए की सब्सिडी स्कीम शुरू करने की योजना बना रही है। इस संबंध में अंतर मंत्रालयी परामर्श चल रहा है। भारी उद्योग मंत्रालय के सचिव कामरान रिजवी ने नई दिल्ली में एक समारोह में जानकारी दी कि यह स्कीम दुर्लभ मृदा ऑक्साइड को चुंबकों में बदलने के लिए सहायता प्रदान करेगी। यह प्रस्तावित स्कीम चीन द्वारा दुर्लभ मृदा चुंबकों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के बाद आई है। चीन के इस कदम से वैश्विक आपूर्ति और इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता प्रभावित हुए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि स्वदेशी प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में सफलता हासिल की। आज आईआईटी मद्रास के 62वें दीक्षांत समारोह में श्री डोभाल ने विद्यार्थियों से दुर्लभ खनिजों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे संसाधनों के जरिए नई तकनीक बनाकर देश को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का आग्रह किया।
Make it a proud country, a major power in military terms, in economic terms, in science and technology, in everything and every area of the human activity. If you can manage your time, you can manage your energy, and we can manage your mind and spirit. You can achieve it.
एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति की आज नई दिल्ली में संसद भवन में बैठक हुई। 39 सदस्य इस समिति में लोकसभा के 27 और राज्यसभा के 12 सदस्य शामिल हैं। यह बैठक 129वां संविधान संशोधन विधेयक 2024 और केंद्र शासित प्रदेश विधि संशोधन विधेयक 2024 की व्यापक समीक्षा के तहत हुई। भारतीय जनता पार्टी के सांसद पीपी चौधरी की अध्यक्षता वाली समिति ने जारी विचार विमर्श के तहत कानूनी विशेषज्ञों के साथ सलाह मशविरा किया। बैठक में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने देश में एक साथ चुनाव कराने के मुद्दे पर समिति के समक्ष प्रस्तुति दी। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा, समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव सहित अन्य लोग बैठक में शामिल हुए। भारी उद्योग मंत्री अजय कुमार स्वामी ने आज पीएमई ड्राइव योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रिक ट्रकों को प्रोत्साहन देने की शुरुआत की। सरकार ने पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रकों के समर्थन के लिए योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य देश को स्वच्छ ऊर्जा की ओर ले जाना और माल ढुलाई की टिकाऊ आवाजाही में मदद करना है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने सुचारू टोल संचालन के लिए गाड़ी पर बिना चिप के फास्टैग को ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने आज कहा कि यह पहल टोल संचालन को और अधिक कुशल बनाने में सहायता करेगी। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष, खासकर कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल पर निशाना साधा है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि पुनरीक्षण की यह पूरी प्रक्रिया निर्वाचन आयोग के संवैधानिक अधिकार क्षेत्र में आती है।
It is well within the jurisdiction of the Election Commission of India under the Constitution and the Representation of People Act 1950 to undertake this exercise for more accountability and transparency. We hope that some sense will prevail on leaders like Tejasvi Yadav as well as Rahul Gandhi and they will introspect and will respect the decision of the highest court of the country.
गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने कहा कि सरकार ने वडोदरा पुल हादसे की उच्चस्तरीय जांच कराई है। जांच समिति की रिपोर्ट के अनुसार मुजपुर गंभीरा पुल पैदल यात्रियों की अत्यधिक भीड़ और पुल पर पड़े दबाव के कारण ढह गया। श्री पटेल ने आज वडोदरा जिले के मुजपुर में गंभीरा पुल घटनास्थल के दौरे के दौरान ये बात कही। घरेलू शेयर बाजार में आज बिकवाली तेज रही और प्रमुख सूचकांक लगभग 1% घाटे के साथ बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 690 अंक घटकर 82,500 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 205 अंक नुकसान के साथ 25,150 दर्ज हुआ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।